اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر کے لیے. اور اس کا ابتدا بڑی خوبصورت ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور ان کے برابر امیر مومنین تشریف فرما تھے اور مسجد خالی تھی. جب مسجد خالی تھی تو میں نے سوچا کہ میں مسجد کے خالی ہونے کا فائدہ اٹھاؤں اور میں اللہ کے نبی سے نصیحت طلب کروں جس سے میں اپنی دنیا کی سعادت آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکوں. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر, حضرت ابو ذر کی تعریف میں ایک جملہ کہا جو ابھی میں یہاں پہ بغیر کسی مقدمے میں کہوں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گا لہذا میں نہیں کہہ رہا. اور انہوں نے فرمایا ایک جملہ اور اس کے بعد کہا کہ ابو ذر میں تمہیں نصیحت کروں گا جس سے تمہاری سعادتیں پوری ہو جائیں گی اور تم ان کی حفاظت کا. پھر حضرت ابو ذر کو نصیحتیں ارشاد فرمائیں. بہت عجیب و غریب, یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی اس روایت کو ایسا رکھ لے کہ اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے تو تبرک, چونکہ یہ حدیث یہاں تک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اس کا تعارف کروا دیا, اس میں سے ایک جملہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. شاید غلط کر گیا میں, دو جملے سوچے, ایک ابھی کہوں گا ایک تھوڑی دیر بعد. فرمایا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه والخشوع. بہت لمبی حدیث ہے اور بہت سارے سٹیجز بیان کیے ہیں کہ ابو ذر تمہیں ایسا ہونا چاہیے, تمہیں ایسا ہونا چاہیے, اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسے بن جاؤ تم ویسے بن جاؤ. بہت اچھی حدیث. اس کے بعد یہ حدیث کا بیچ کا حصہ کیوں ہے؟ جب امت کی خرابیوں کی بات کی تو یہ حصہ ہے. ظاہراً اس کا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے کوئی بہت زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہے, ظاہر ہے حضرت ابو ذر کا مقام بہت بلند ہے, لیکن امت کی خرابیوں کو جب بیان کیا چند جملات کے اندر تو یہاں پہ یہ جگہ آئی. اور فرمایا کہ اس امت سے جو چیزیں پہلی پہلی اٹھیں گی. اچھا, اب میں اس کو خاص کر کیوں پکڑ کے لایا ہوں؟ چونکہ جہاں وہ حضرت ابو ذر کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ابھی وہاں کہانی دور ہے, لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس امت سے جو پہلی پہلی چیز اٹھے گی یہ ہم سے قریب ہے. کیوں؟ چونکہ میں اس اسٹیج کے گمراہی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں, ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں. میرا اپنے خیال, آپ برا نہیں مانیے گا اس بات کو, ہم سے مراد میں اور آپ, یعنی میں کہیں معاشرہ, یہ معاشرہ شاید گمراہی کے اندر اور ڈسٹریکشن کے اندر اس اسٹیج سے نکل گیا جو اللہ کے نبی نے ابھی کہا. اور فرمایا کہ جب اس امت پہ گمراہی آنے لگے گی, اس میں دوری آنے لگے گی, تو سب سے پہلے یہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھیں گی وہ نمبر ایک امانت ہے. قوم امانت دار نہیں رہے گی. قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ صحیح بات. بھائی اس میں کوئی تکلف تعارف کی گنجائش ہے؟ امانت داری اٹھ گئی ہے. ہاں بالکل صحیح, اٹھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے گمراہی کا پہلا اسٹیج تو کراس ہو ہی گیا. فرمایا پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی چیز کہا لیکن دو چیزیں بیان کی. یہ کیوں ہوتا ہے روایت میں ایک کہا اور دو بیان کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان دونوں کا اتحاد ایسا ہے کہ دو نہیں بن رہی ہیں. کہا پہلی چیز جو اٹھے گی امانت ہے, والخشوع, اور دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ جائے گا. بظاہر تو دو چیزیں, خشوع دل کے اندر ہوتا ہے, امانت انسان کی دوسرے انسانوں کے معاملے میں ہوتی ہے. ایک کا تعلق حقوق الناس ہے, ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, لیکن دونوں کا کولیبریشن کوئی اتنا شدید ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک کر کے بیان فرمایا. یعنی میرا اپنے خیال ہے اللہ کے نبی ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب خشوع اٹھے تو سمجھ جانا کہ کیا ہو گیا, امانت جا چکی ہے. اور جب امانت اٹھ جائے تو سمجھ جانا کہ اب خشوع باقی نہیں رہے گا. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سوسائٹی میں دونوں کی حالت کیا ہے؟ دونوں ہی غائب ہیں. اچھا یہ خشوع کیا ہونا چاہیے؟ اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور یہ دیکھو کہ اس کے خشوع میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, تو سمجھ جانا یہ وہ علم ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے. علم اور خشوع کا براہ راست تعلق بیان فرمایا اسی روایت کے اگلے مرحل کے اندر. اگلے مرحل سے میرا مطلب یعنی مانوی طور پر اگلے مرحل, ورنہ جملے میں شاید پہلے تھا یا بعد میں تھا مجھے یاد نہیں. فرمایا کہ جب بھی کسی کو علم نصیب ہوگا خشوع نصیب ہوگا, اور اگر خشوع نصیب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو علم اس کو مل رہا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب میں چونکہ سخت باتیں کرنے کا عادی ہوں لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کو ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں دست بستہ کیا رہا ہوں اور ہاتھ نہیں جوڑتے. دست بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ بند, یعنی یوں کر کے. لیکن ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں دست بستہ بغیر ہاتھ جوڑے, تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دست بستہ بغیر ہاتھ جوڑے. वो क्या 60 दिन में जो आपको इल्म मिला इससे आपके खुशू में इजाफा हुआ है क्या? अगर खुशू में इजाफा नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इल्म नहीं। इल्म अपनी माहियत के अंदर अल्लाह का खुशू लेकर आता है। अच्छा, इस खुशू की अलामत क्या होनी चाहिए? हर इंसानी नफसानी कैफियत की कोई अलामत होती है। एक इंसान खौफजदा होता है तो चेहरे पे आता है, नहीं आता? आता है। खुश होता है तो चेहरे पे आता है, बिल्कुल आता है। वो आपने स्टडी शायद सुनी होगी या कहीं देखी होगी, अगर आपकी फील्ड है, कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने जो इंसानों के इंटरव्यूज वगैरह हो रहे होते हैं, या मसलन जैसे हम इस बात कर रहे हैं, हमारी कोई तस्वीर बन रही है, वीडियोस बन रही हैं, तो उसने एक सेकंड में मसलन कितने फ्रेम्स चलते हैं तो आपको सही चलता हुआ नजर आता है, तो उसने ब्रेक कर दिया और मसलन एक सेकंड के कई फ्रेम्स निकाल लिए उसने। तो मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं एक सेकंड के उसने 25 फ्रेम निकाल लिए, तो उसने देखा कि इंसान के चेहरे पर तेजी में जो असरात नजर नहीं आते, तब्दीलियां नजर नहीं आती मसल्स की, वो छोटे होने पर फ्रेम ज्यादा करने पर नजर आ जाता है, वो नजर आ जाता है। तो उसने ये अंदाजा किया कि इंसान के चेहरे पे मसल्स कितने हैं, क्योंकि ये सारे मसल्स का कॉम्बिनेशन है जो उसके अंदर की हालत को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद उसने सबका अंदाजा लगाकर बताया कि भाई इंसान के चेहरे में जो मसल्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज इतनी बन रही है। उसके बाद उसने उन तमाम को नफसियाती हालतों से कनेक्ट किया, सही है। तो उसने बताया कि भाई अब मिसाल के तौर पर एक आदमी के ऊपर एक हालत है जिसमें खौफजदा तो है लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, सही है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे जिसमें वो खौफजदा है और अभी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अच्छा, एक दफा खौफजदा है, उम्मीद बाकी है और खौफ भी कोई ज्यादा नहीं है। खौफ ज्यादा नहीं, कोई बड़ी चीज खतरे में नहीं है, लेकिन एक दफा चीज बहुत बड़ी खतरे में है, खौफ भी है और उम्मीद कम है। तो फेशियल एक्सप्रेशन सबके बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। जो कुछ इंसान के अंदर होता है बाहर आता है, और ये आपकी और हमारी महारत होती है। तो उसने ये भी कहा कि इंसान फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करने में इतने माहिर हैं कि कोई आदमी एक्सपर्ट हो और ना हो, इनका जो एक्यूरेसी का डिफरेंस है वो 30% से ज्यादा नहीं है। कोई आदमी एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट ना हो, दोनों फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करें तो इनकी एक्यूरेसी का रेट 30% से ज्यादा डिफर नहीं करता है। एक्सपर्ट 30% ज्यादा एक्यूरेटली बता देता है। तो इंसान को खुदा ने ये महारत दी है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये कि अगर हमें वाकई इल्म मिल रहा है और इल्म के साथ खुशू मिलना जरूरी है, इस खुशू की हालत की कोई अलामत है क्या? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये तो चेहरे पे आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अमल में आएगी या नहीं आएगी? खुशू की हालत आएगी। खुशू एक हालत जो होनी चाहिए, वो सिर्फ जहन्नम का खौफ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में शायद खुशू ज्यादातर एहतराम और मोहब्बत के नतीजे में आनी चाहिए, सही है। एक दफा मसला ये होता है ना कि हम किसी से डर रहे होते हैं कि अगर हमने उसके सामने कोई गलत हरकत की तो बहुत मारेगा, सही। इसको खौफ तो कह सकते हैं लेकिन खुशू कहना मुश्किल है। लेकिन मसलन पुराने जमाने में, नए जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने में जैसे वालदैन के सामने एहतराम से लोग बैठते थे, तो शायद मारेगा भी नहीं, क्योंकि अब बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है कि मारने की ताकत भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी खुशू था, सही। पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसे नए जमाने की बातें हरगिज नहीं है, ये पहले जमाने में होता था ऐसा। तो ये जो खुशू है, अगर किसी के अंदर खुदा के लिए हो तो उसके उसके साथ क्या होना चाहिए? कभी ना कभी तन्हाई में रोएगा, कभी ना कभी तन्हाई में रोएगा। अच्छा, अगर कोई शख्स तन्हाई में खुदा के लिए नहीं रो रहा, इसका मतलब क्या? मैं तालिब इल्म होने के नाते अर्ज कर रहा हूँ, खुशू नहीं है। और अगर रिवायत भी है, मैं तो खुद ऐसी अपने उसमें डाल दिया मैंने कि तालिब इल्म रिवायत है मेरे पास, फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गोया खिताब किया अल्लाह ताला, फरमाया कि ऐ मूसा, झूठा है वो आदमी जो कहता है कि मुझे चाहता है और जब सब सो जाते हैं तो मेरी याद में नहीं उठता, ये मुझसे तन्हाई में गुफ्तगू क्यों नहीं करता अगर ये मुझे चाहता। अच्छा, ये आदत कि इंसान तन्हाई में खुदा को याद करे, ये कौम से उठ गई है या अभी कौम में बाकी है? ऐसा मुझसे अब इसको वापस कैसे लाए? खुदा न करे, नाऊज़ु बिल्लाह, एक बुरी आदत माशरे के ऊपर हाकिम हो गई। वो क्या? खुदा के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, खुदा के सामने राजो न्यास करना बंद कर दिया। तो इसे कहां से सही कर, किस तरीके से इसको बेहतर कर। तो जो नबी की रिवायत थी उसमें अमानत के साथ आया हुआ, इसका मतलब है कोई ना कोई ताल्लुक अमानतदारी से है। और हमारे पास एक और रिवायत है, उस रिवायत को मैं तशय्यो के मनाबे में नहीं देख सका, कम से कम हमारे भाइयों की सहीहैन के अंदर तो है। उस सहीहैन के अंदर एक रिवायत है, मफहूमन सही लग रही है, लेकिन हमारे पास कम से कम अपनी सोच में नहीं देख पाया अभी तक। उसमें भी अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र को वसीयत की थी, नसीहत की थी। हज़रत अबू ज़र ने गोया इस तरह पूछा कि मैं कुछ अच्छे काम अंजाम देना चाहता हूँ, नहीं कर पाता, तो इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते। अल्लाह के नबी ने उस रिवायत में कहा, सहीहैन में है, कहा कि लोगों से अपने शर को कम करो, ये खुद एक सदका है। मफहूम सही, एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर मुझे अपने मनाबे में नहीं मिली, लेकिन मफहूम बिल्कुल सही, मफहूम मौजूद है हमारे पास। सही, लोगों के साथ तुम्हारा शर बढ़ेगा तो एक असर क्या निकलेगा, जो तुम अच्छा काम करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। सही, तो अब हमारे पास पूरी एक सीक्वेंस बन रही है, वो क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये हमारे मनाबे के अंदर मौजूद है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया, कि फरमाया, ऐ अबू ज़र, मेरी उम्मत से जो पहली चीज उठेगी वो अमानत है और खुशु। ये दो चीजें मैंने कहा कि दो को अव्वल क्यों कहा था, ये स्टेज की वजह से कहा था कि ये दो चीजें सबसे पहले उठ जाएगी। क्या चीज हुई, अमानत उठेगी, अमानतदारी उठ जाएगी और लोगों के दिलों में खुशु नहीं रहेगा। तो मैंने कहा इनका कोई रابطہ है, رابطہ कहां निकल रहा है, उस दूसरी रिवायत से निकल रहा है कि जब हम अमानतदारी में खराब हो जाते हैं, लोगों के लिए हमारा वजूद शर बन जाता है, तो फिर खुशू भी हमारे दिल से निकल जाता है। तब मैं इस पूरे को जमा करके कंक्लूजन क्या निकालूं, कंक्लूजन ये निकालूं कि अगर मुझे खुशू चाहिए तो कम से कम, ये भी रिवायत में मौजूद है, ये भी रिवायत मौजूद, तो मगर खुदा के लिए रो नहीं सकते ना, तो कम से कम हुज़्न तो अपने दिल में लाओ, गम तो लेकर आओ खुदा के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं इस तरह से करूं कि मैं अपने ऊपर इस बात को प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आऊं कि मैं खुदा के लिए तन्हाई में कोई कैफियत बना सकता हूं अपने अंदर, अकेले में खुदा के लिए कोई कैफियत बनाऊं अपने लिए। जब मैं देखूं इस कैफियत को बनाने में खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह ताला कामयाबी नहीं हो रही, तो फिर मैं क्या सोचूं, मैं सोचूं लोगों का कौन सा हक है जो मैंने अदा नहीं किया, क्योंकि अगर लोगों का कोई हक मेरे हाथ पे रह गया है, इसका मतलब ये कैफियत मुझे नहीं मिलने वाली। तो मैं उस कैफियत को हासिल करने के लिए अपने अमल के अंदर गौर करूं कि अमानतदारी में कोई चीज रह गई है। अच्छा, ये रिवायत भी हमारे पास मौजूद है, ये भी हमारे मनाबे के अंदर मौजूद है, बस वो एक रिवायत थी जो मुझे नहीं मिली थी, बाकी हमारी वाली है। उसमें फरमाया कि अगर कोई इंसान झूठ बोले तो जो चीज उसके हाथ से निकलती है वो नमाज शब ये निकल जाती है। सही, तो फिर हमें एक और रابطہ मिलता है, वो ये कि इंसान के आमाल जो दूसरे इंसानों के साथ काम कर रहा है, वो इसमें कहीं हुकूक की अदम अदायगी में इबादतें इसके हाथ से निकल जाती हैं, और उन इबादतों में जो चीजें इसके हाथ से निकल रही हैं वो खासकर नवाज़ शब क्यों इरशाद फरमाया, कोई तन्हाई और खुशू का मामला। लुबे लुबाब क्या हुआ, अगर कोई शख्स बंदों के हुकूक को अदा करने में नाकाम होगा, खुदा उसको अपनी तन्हाई से बाहर निकाल देगा, खुदा उसको तन्हाई नसीब नहीं करेगा। ये वो खतरनाक इक्वेशन है जो हमारे सामने है। अब इसको मैं और आप दोनों तरफ से तोड़ने की कोशिश करें, खुदा ने कहा नाउज़ु बिल्लाह, जो माशरे के ऊपर ये हालत है, और उस तरीके से कि एक तरफ से हम खुदा के लिए वक्त निकालें अपनी जिंदगी में कि भाई मुझे खुदा की खिदमत में हाजिर होना है, तन्हाई में। तन्हाई में इसरार क्यों है, क्योंकि वैसे तो सोशल प्रेशर में इंसान बहुत कुछ कर लेता है, उसमें खुदा कम हो जाता है, बाद वक्त सोशल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा तन्हाई में जाए, और उस तन्हाई को हासिल करने के लिए जब वो खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह देखे इसमें कामयाबी ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो उसी वक्त और या उससे पहले जज करे कि मैं लोगों के हुकूक को अदा करने में खुदा ना करे कहीं नाकाम तो नहीं हो रहा, वो अदा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो ये एक मरहला बन जाए और इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होना नसीब हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और मरहला भी आएगा, वो क्या, 5-10 दिन करेगा फिर भूल जाएगा। अच्छा, 5-10 दिन करने के बाद क्यों भूला था, क्योंकि इस 5-10 दिन में इसने कोई और नया हक है जो अदा नहीं किया, एक नई कहानी शुरू की इसने, फिर हाथ से जाए। सर, इससे बचने के लिए क्या करें, वो इसने लिखा ना कि भाई आप जो अखलाक बोलने वाले हो वो डॉक्टरों की तरह नुस्खे लिख लिख के मत आया करो, बल्कि दवाई खिला के आया करो। नुस्खे डॉक्टर लिखता है, चूंकि उसको अपना क्लिनिक चलाना होता है, और दवाई वो खिलाता होता है जिसको शिफा देनी होती है। नुस्खे मत लिखो, दवाई खिला के। अब दवाई खिलाने के लिए क्या करें, क्योंकि इसके साथ एक और चैप्टर भी है, वो क्या है, ये कभी ना कभी हुकूक में कोताही करेगा, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी जिंदगी में एक चैप्टर बना रहे इस्तग़फार। रोजाना की बेस पे तन्हाई में अल्लाह के सामने इस्तग़फार करें। उम्मीद कवी ये है कि अगर खुदा ना करे दिन में कोई गड़बड़ करेगा भी, तो उस इस्तग़फार के सदक़े में वो गड़बड़ थोड़ी सी जमा हो जाएगी, वो बरतरफ हो जाएगी और ये खुदा की तरफ अपने खुशू के रास्ते में चलने में कामयाब हो जाएगा।